ओम शांति। इस सीजन में प्यारे बाप दादा ने एक बात का बार बार अटेंशन हमारा खिंचवाया और वो है कि समय अनुसार अपने पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुरुषार्थ हरेक का चल रहा है। लेकिन कल भी बार बार बाबा ने भिन्न भिन्न रूप से हम बच्चों को यही कहा कि चेक करो अपने आप को। चेक करना है क्या हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है। जिस गति से हम चल रहे हैं क्या हम उसमें संतुष्ट है। ब्राह्मण जीवन भगवान भाग्य विधाता के द्वारा मिला हुआ श्रेष्ठ भाग्यशाली जीवन, क्या इस जीवन के द्वारा अपने कर्मों के द्वारा अपने जमा के खाते के आधार से अगर हम अपने आप को देखें तो क्या हम उससे संतुष्ट हैं। और अगर संतुष्टता में परसेंटेज है तो इसका मतलब कि कहां न कहां हमें अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए। ये अंतर ब्राह्मण जीवन में नहीं होना चाहिए। ये अंतर को मिटाना है हमें और यही पुरुषार्थ करना है। उसके लिए जब मैं बाबा के सारी सीजन की मुरलियों को देख रही थी तो बाबा ने लगभग 3-4 मुरलियों में भिन्न भिन्न रूप से यही सहज पुरुषार्थ बच्चों के सामने रखा कि अब आने वाले समय के लिए जो तीव्र पुरुषार्थ का आधार है वो सरल एक ही बात में है कि दुआएं दो और दुआएं लो। कभी कभी हम बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा ने कितनी सरल विधि बता दी, बस यही करना है और इसी के आधार से हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, अंतर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम चिंतन करें तो जितना सरल रूप से कहा गया है उतना सरल है नहीं, क्योंकि दुआएं देना और दुआएं लेना ये सहज स्वाभाविक कब हो सकता है। उसके लिए हमारी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए और वो श्रेष्ठ वृत्ति हो तब जाकर के हम दुआएं देने का कार्य कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी भगवान को यही कहा गया है कि वो जानी जाननहार है। ये बाबा ने कई बार स्पष्ट कर दिया हम सबके सामने कि बच्चे हरेक के दिलों के अंदर क्या चल रहा है ये मुझे जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बाबा समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला समय कैसा है और उस समय के लिए हमें क्या चलने की विधि अपनानी है, उसके लिए वो बातें हमें बताते हैं। ये जरूर है कि बाबा कभी भी नेगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो बाबा कभी कह करके डराएगा नहीं। कई बार कई लोग हमें कहते हैं कि साकार मुरलियों से हमें अव्यक्त मुरलियां बहुत अच्छी लगती है। अव्यक्त मुरलियां क्यों अच्छी लगती है साकार मुरलियों से भी? उसका कारण है क्योंकि अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने हर बात पॉजिटिव वे में बताई है, लेकिन साकार मुरली में बाबा कभी कभी कड़क शब्द यूज करता था, कभी अथॉरिटी के बोल बाबा के सुनाई देते थे कि बाबा जब कह देता था बच्चे विनाश की बातें या बच्चों की कमजोरियों को लेकर के कोई बातें जब सुना देता था मुरली के अंदर, और आज भी जब वो मुरली सुनते हैं तो वो कभी कभी अंदर में लग जाती है। बाहर निकल करके कई बाबा के बच्चे कहते आज तो बाबा ने बड़ी कड़क मुरली चलाई। अव्यक्त मुरलियों में बाबा कभी ऐसी बातें नहीं करते हैं कि बच्चे आने वाला समय इतना खराब है। कोई डराने वाली बात बाबा नहीं करता है कि बच्चे समय बहुत खराब आएगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अगर ऐसी बातें करे तो बच्चे एकदम डर जाए, पता नहीं क्या कह दिया बाबा ने, डर जाए। इसलिए बाबा ने सरल विधि से कह दिया कि बच्चे दुआएं देना और दुआएं लेना ये समय की मांग है और यही हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनाएगा। लेकिन दुआएं कब देना होता है उसका चिंतन करो। तो बाबा ने कहीं कहीं ये बात तो अवश्य कही है कि बच्चे ऐसे लोग आएंगे, सामना करेंगे तुम्हारा, इस प्रकार की बातें बोलेंगे। भाव यही होता है कि दुआएं कब देना होता है कि चाहे सामने वाली आत्मा क्या भी करे, कुछ भी व्यवहार करे। बाबा ने 31 दिसंबर की मुरली में ये बहुत स्पष्ट शब्द में कहा कि बच्चे कारण अनेक आएंगे, लेकिन बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है कि बाबा ये कारण हो गया इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए हम दुआएं नहीं दे सके, इसलिए ऐसा व्यवहार हो गया। कारण नहीं सुनना चाहेंगे। माना कारण आने के 100 रास्ते हैं और कारण आएंगे। समय ये आने वाला है कि 100 कारण हमारे सामने आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार होगा, लेकिन बाबा कारण देखना नहीं चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि आप बच्चे निवारण स्वरूप में रहो, यानी कारण को आएंगे। अब बाबा ये कहकर के थोड़ी डराएगा बच्चों को कि बच्चे फलाना व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, समय ऐसा आएगा, लोग ऐसे आएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं आएगी, ये कहकर के थोड़ी डराने वाला है। बाबा ने ये कहा समस्याएं आएगी, लेकिन बाबा चाहता है कि आप बच्चों का स्वरूप समाधान स्वरूप हो। समस्याओं को वर्णन नहीं करो, समस्या का स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। यानी समस्या आने वाली है, कारण आने वाले हैं, ये निश्चित है, लेकिन उस समय भी हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो दुआ देने के लिए जो बाबा ने बहुत सुंदर बात पिछली मुरली में बताई कि बच्चे तुम क्षमा के सागर के बच्चे हो। क्षमा के सागर के बच्चे का स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्षमा स्वरूप। दुनिया के अंदर जो महान आत्माएं, धर्म आत्माएं आ गई, उनकी विशेषता भी कौन सी थी? उनके जीवन की विशेषता भी यही थी कि उनके सामने कैसी भी आत्माएं आई, लेकिन उन्होंने सदा क्षमा की भावना रख करके उनको क्षमा कर दिया। चाहे क्राइस्ट के लिए दिखाया कि उसको जब कील पर चढ़ा रहे थे तब भी उसने अपनी अंतिम प्रार्थना में भगवान के सामने यही कहा, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। महावीर स्वामी के कान में जब खीले ठोके तब भी उसने क्षमा अपना की ही भावना सबके प्रति रखी। महात्मा बुद्ध के जीवन में भी यही दिखाई दिया है कि हमेशा अंगुलीमल जैसे व्यक्ति को भी क्षमा दान दे दिया, इसलिए तो उनकी महानता है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की महानता भी क्या है कि चाहे कैसे भी बाबा के सामने अनेक प्रकार के संस्कारों वाले बच्चे आए लेकिन फिर भी बाबा ने उनके संस्कारों को नहीं देखा। पिछली मुरली में भी बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि बच्चे 99 गलती क्यों न करते हो, लेकिन बाबा ने वो 99 गलतियों को नहीं देखा, एक विशेषता को देखा और उस विशेषता को देख करके ही अपना बच्चा बना दिया। तो यही क्षमा के सागर के बच्चे की प्रथम विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि दुआ देने के लिए अगर हमारे अंदर क्षमा करने की भावना नहीं है तब तक शुभ भावना शुभ कामना हमारे अंतर से निकलेगी नहीं। शुभ भावना रखो शुभ कामना रखो ये कहना सहज हो जाता है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना रखने के लिए अंदर से कोई भी आत्मा क्षमा कर दो उसको। जिस प्रकार कोई अज्ञानी आत्मा उल्टा सीधा व्यवहार करती उल्टा सीधा बोल बोलते हैं और उस वक्त हमारे अंदर यही आता बिचारी अज्ञानी आत्मा है बाबा को पहचानती नहीं इसलिए बोल रही और क्षमा कर देते हैं हम, और फिर भी उसके प्रति एक रूहानी दृष्टि वृत्ति हम रख सकते हैं कि एक न एक दिन ये बाबा को जरूर पहचानेंगे। इसी प्रकार कोई ज्ञानी आत्मा का भी स्वभाव संस्कार के हिसाब से आज इतने जन्मों का हमारा हिसाब किताब है अनेक आत्माओं के साथ, क्योंकि पूरे 84 जन्म के चक्र में तो हम ही आते हैं ना, तो हमारे ही मैक्सिमम हिसाब किताब है। तो वो हिसाब किताब के आधार पर किसी का कैसा व्यवहार हो किसी का कैसा व्यवहार हो, लेकिन उस वक्त उस आत्मा के प्रति भी ये रहम की भावना आना कि ये भी बाबा की बच्ची है ये बाबा का बच्चा है और क्षमा कर देना, तब उसके प्रति दुआएं स्वतः निकलेगी। दुआएं देना ये तो चलो फिर भी ठीक है हमारे प्रति, लेकिन बाबा ने जो दूसरा आधा शब्द कहा दुआएं लेना, यानी हम ऐसे अपने आप को पात्र बनाएं जो दुआ स्वतः मिले। दुआ मांगने से नहीं मिलेगी, अगर हम लोगों को ये कहे कि आप मुझे दुआ दो ऐसे कोई दुआ देने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी किसी के प्रति दुआओं की भावना रखे क्षमा भावना कर दे ये हमारी विशेषता है, मान लो एक एक ब्राह्मण की विशेषता हो कि हम दुआ देते, लेकिन दुआ मिलती किसको है, मांगने से तो मिलेगी नहीं। यानी ऐसा अपने आप को पात्र बनाना आवश्यक है। तो कौन सी पात्रता चाहिए दुआ प्राप्त करने के लिए? क्या होता है हम दुआ दे तो दे सकते हैं लेकिन लेने में कभी कभी दुख की फीलिंग्स को हम ले लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया दुख की फीलिंग आ गई तो दुख ले लिया और दुआएं दिया नहीं। बाबा ने कहा दुआ देना भी है और दुआ लेना भी है, तो लेंगे कैसे, दुआ किसको मिलती है सोचिए, दुआ किसको मिलेगी। बाबा ने एक मुरली में तीसरी या चौथी मुरली के अंदर ही बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया कि बच्चे दुआ उसको मिलती है जो सुपात्र होता है। सुपात्र अर्थात जो कल बाबा ने विशेषता बताई सुपात्र आत्मा की, निर्माण बोल, निर्माण व्यवहार, निर्मल स्वभाव, जितना अंतर उसका शुद्ध और स्वच्छ है, ऐसी आत्मा जो व्यवहार कुशल है सबके साथ, वो सुपात्र बन जाती है। और ऐसी सुपात्र आत्मा के लिए दिल से स्वतः दुआ निकलती है, जो व्यवहार कुशल होते हैं। दूसरा, दुआ उसको मिलती है जो समय पर किसको सहयोग दे देता है, आवश्यकता के हिसाब से किसको समय पर सहयोग देना, ये दुआओं का अधिकारी बना देता है। सहयोग ऐसे तो सब दे देते हैं, लेकिन समय पर आवश्यकता के हिसाब से सहयोग देना, यज्ञ हिस्ट्री में याद आता है कि जब यज्ञ के अंदर बेगरी पार चल रहा था, कि जब यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं था, चाराना भी नहीं था, और उस समय जब बाबा के पास दादी जाते थे और कहते थे कि बाबा 350 को खिलाना है, घर में कुछ भी नहीं है, क्या करे, बाबा इतना निश्चय बुद्धि, साकार बाबा इतने निश्चय बुद्धि और निश्चिंत दादी को कहते थे आप 10 बजे आना। 10 बजे बाबा कहां से लाएंगे, फिर भी चलो बाबा ने 10 बजे बुलाया है, चले जाएंगे। 10 में 5 कम को दादी पहुंच जाते थे और कहते थे बाबा, बाबा कहते अच्छा बच्ची बैठो, जल्दी आ गई हो, बैठो, बिठाते थे अपने पास में। और 10 बजे पोस्ट आती थी और उस पोस्ट में 1000 रुपया आता था। भेजने वाला कौन था, बाबा जानता था, जिसको बाबा ने नाम दिया था मंदोदरी। रहती थी रावण के बीच में, रावण की नगरी में, लेकिन वहां रहते हुए भी इतनी उसको यज्ञ बाबा के प्रति भावना थी, जो समय पर सहयोग दिया था। और वो सहयोग को भगवान भी भूल नहीं पाए कि जब वो उस रावण की कैद से छूटी वो आत्मा और जब मधुबन में आई, तो उस समय बाबा ने कहा बच्ची मेरा कमरा उसको दे दो, क्योंकि उस समय यज्ञ के अंदर उस तरह के रहने की व्यवस्था नहीं थी और वो बड़े घर की थी। बाबा जानता था किस प्रकार से पली हुई थी और उसके लिए बाबा ने कहा बाबा अपना कमरा खाली करके उस बच्ची को दे देगा। कहने का भावार्थ समय पर सहयोग दिया था, इसलिए भगवान भी उसके सहयोग को कभी भूल नहीं सकता है। वो रोज कोई ज्ञान योग नहीं कर पाती थी, न उसको मुरली मिलती थी, न वो इस तरह का पुरुषार्थ कर सकती थी, लेकिन समय पर मददगार बन गई तो कई गुना पदम गुना भाग्य जमा करने के अधिकारी बन गई। कई बार हम रोज बाबा की मुरली प्यार से सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन समय आता है और सहयोग जब देना होता है तो अपने कदम को पीछे हटा देते हैं। और समय पर अगर हम सहयोगी नहीं बने, बाबा के कार्य की बात नहीं कर रही हूं मैं, दुनिया की आत्माओं के प्रति भी, यह जहां पर भी आवश्यकता के हिसाब से हम देखें और वहां पर सहयोग देवे अपना, उस समय अपने आप को देखना है। और जब वहां सहयोग दिया तो उस आत्मा के अंदर से दुआएं निकलती ही है कि इसने मेरे को आवश्यकता के समय पर सहयोग दिया। कई बार कई लोग कहते हैं दुनिया में तो मानवता नहीं रही कि वो समय पर सहयोग देने के बजाय तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं कि देखें इसको कौन सहयोग देता है। अगर हम ब्राह्मण बच्चे भी अगर दुनिया वाली चाल को अपनाएं कि समय पर सहयोग देने के बजाय हम भी वो तमाशे वाली लाइन में खड़े हो जाए देखने के लिए कि तमाशा देखे अभी क्या होता है, तो क्या उसके प्रति दुआएं निकलेगी? इसलिए आवश्यकता के हिसाब से समय प्रति सहयोग देना ये स्वतः स्वयं को दुआओं के अधिकारी बना देता है और पुण्य के खाते को जमा करने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। दुनिया के अंदर लोग अपने कदमों को पीछे हटा देते हैं, लेकिन दुआओं के पात्र वही आत्मा बनती जो समय पर अपने हिम्मत के कदम को आगे बढ़ाती है। जब सारी दुनिया ने कदम अपने पीछे हटाए, उस वक्त जो अपने कदम को आगे बढ़ाता है उसके प्रति अंतर से दुआ निकलती है कि ये व्यक्ति ने हिम्मत रख करके आकर के मेरी समय प्रति मदद किया। तो हिम्मत उसी समय रखने की बात है और उसी समय के समय पर दुआ उस आत्मा के प्रति निकलती है। तीसरा दुआ लेने का आधार है कि कोई विशेष सेवा के निमित्त बन जाना। विशेष सेवा के निमित्त कब बन सकते हैं? बाबा ने हर बच्चे के अंदर विशेषता भरी हुई है और विशेषता के हिसाब से जब समय आता है तो वो पार्ट खुलने का समय होता है और वो सेवा उसके सामने एक अवसर के रूप में आती है। अगर उस वक्त हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं ये सेवा मेरे से नहीं होती है और नहीं करके हमने पीछे अपने कदम हटा लिए, तो सचमुच वो भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई विशेष सेवा अवसर के रूप में आपके सामने आती है और वो आपके दरवाजे को खटखटाती है, उस वक्त वो विशेष सेवा आपको विशेष भाग्य के अधिकारी बनाने वाली होती है, जिसको दुनिया में कहते हैं कि सिमसिम दरवाजा खुल जा। सिमसिम दरवाजा खुल जा कि जिस वक्त हमने ये कहा कि ठीक है हम ये सेवा करेंगे, ये सेवा का अवसर अगर मेरे सामने आया है और हाजी बन करके आज्ञाकारी बन करके हम वो सेवा में अपने आप को निमित्त बना देते हैं, तो भाग्य के दरवाजे एक के बाद एक खुलने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त अगर हमने ये कहा कि नहीं नहीं ये सेवा मेरे से नहीं होगी, ना किया माना, जैसे साकार बाबा कहते थे ना किया माना नास्तिक, जिसने समझा ही नहीं कि भाग्य विधाता ने मेरे सामने ये अवसर क्यों भेजा है, जरूर कोई विशेष भाग्य प्रदान करने के लिए भेजा है, लेकिन उस वक्त अगर हमने ना कर दिया माना भाग्य के दरवाजे को सदा के लिए बंद कर दिया और वो भाग्य दूसरे किसी के पास चला जाता है। जब विशेष सेवा के निमित्त बन जाते हैं तब वो भाग्य के भी अधिकारी बना देती और जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हैं वो सर्व आत्माओं की दिल की दुआ और परमात्म दिल की दुआ भी हमें प्राप्त करने के अधिकारी बनाती है कि भगवान भी ऐसी आत्मा को देखकर खुश होता है कि नहीं ये आज्ञाकारी बन करके उसने हाँ किया। तो वो विशेषता नहीं होगी तो भी भगवान वो विशेषता भर देगा। मुझे याद आता है कि जब SML की ट्रेनिंग शुरू हुई और हमको आता नहीं था, हमने मना किया था कि नहीं ये सेवा हमसे नहीं होगी, और जब हमने मना किया फिर भी कहा नहीं जाओ, और हमने सोचा ठीक है चले जाते हैं। और जब हम उस सेवा में कूद पड़े तो कैसे विशेष आत्माओं की सेवा जो उससे होने लगी, तो विशेष भाग्य के अधिकारी बनाया उस सेवा ने, कि उसी सेवा के आधार पर मधुबन निवासी बनने का जो भाग्य मिला, और मधुबन निवासी बन करके जो भाग्य आज यहाँ सेवा करके अनेक देश विदेश में जिस प्रकार सेवा की लॉटरी मिलती गई, तो ये क्या कहेंगे कि एक सेवा ने किस प्रकार विशेष भाग्य के अधिकारी बना दिया। तो ये मैनेजमेंट आता नहीं था, लेकिन हाजी करके आज्ञाकारी बन करके उस सेवा के निमित्त बन गए। निमित्त बने तो अनेक आत्माओं की दुआएं स्वतः प्राप्त होने लगती, और वही दुआएं किस प्रकार भाग्य बनाती जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन मैनेजमेंट की विशेषता न होते हुए भी वो विशेषता बाबा ने कैसे भर दी, कि जो किसी के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन किस प्रकार बड़े बड़े बुद्धिजीवी आत्माओं की बुद्धि को पलटाने की वो विधि उस वक्त भगवान ने विशेष वरदान के रूप में दे दिए। तो ये मेरे अपने जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव है कि जब भी हम कोई विशेष सेवा के निमित्त बनते हैं, वो अवसर एक बार आता है, लेकिन एक बार आकर के अगर हमने ना जी किया तो भाग्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाता था, और हम वहाँ के वहाँ ही होते थे, जीवन में कोई प्रगति नहीं कर पाते थे, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन हाजी किया, आज्ञाकारी बने, तो आज भगवान ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और कितना श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, किस प्रकार दुआओं के अधिकारी बनाया, जो स्वतः बाबा की दुआएं आत्माओं की दुआओं को अनुभव कर सके। चौथी विशेष बात है दुआओं को प्राप्त करने का, और वो है कि जब भी किसी कार्य के लिए भगवान हमें निमित्त बनाता है तो समय पर उस कार्य को संपन्न करना। अगर समय बीत जाने के बाद अगर हम संपन्न करते हैं तो कभी दुआएं नहीं मिलती है, लेकिन समय पर अगर कोई कार्य को संपन्न किया तो स्वतः जिन भी आत्माओं को फायदा मिलता है वो स्वतः दिल से दुआ देती है कि समय पर आपने ये काम पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी एक गिफ्ट मिल जाती है, क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा है कि दुआएं लिफ्ट है, वो लिफ्ट का कार्य करती है, कि आप यहाँ होते हैं लेकिन दुआएं ऐसी लिफ्ट है जो आपको सीधा ऊपर चढ़ा सकती है, और ऐसी स्थिति पर ला करके खड़ा कर देती जहाँ स्वयं को स्वयं से संतुष्टि, आत्मा अंदर से स्वयं से संतुष्टता का अनुभव करती। स्वयं स्वयं से संतुष्ट नहीं, लेकिन अनेक आत्माएं भी हमसे संतुष्ट और भगवान भी हमसे संतुष्ट, तो तीनों संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए दुआएं ऐसी लिफ्ट है जो तीनों सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के अधिकारी बना देती है। इतनी श्रेष्ठ दुआओं का कार्य है अपने जीवन के अंदर। इसलिए बाबा ने हर बार इस सीजन की मुरली में कहा कि पुरुषार्थ में तीव्रता, तीव्रता का आधार क्या है, दुआएं देना और दुआएं लेना, यानी अपने आप को ऐसा पात्र हम बनाएं जो दुआएं स्वतः मिलती जाए। तो पुरुषार्थ में जो तीव्रता, यानी ये लिफ्ट में आप बैठ करके कितनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये खुद अनुभव करके देखो, बहुत सुंदर अनुभव होता है। एक आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव, एक आंतरिक खुशी का अनुभव, एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव स्वयं में होने लगता है। दूसरा, बाबा ने इसलिए दुआओं को लेने का कारण बताया कि आने वाले समय में बड़े से बड़ी समस्याएं आएगी और बड़े से बड़ी समस्याओं को पार करने का अगर हो, सेकंड में उसको पार करना हो या सरल रीति से उसको पार करना हो, तो दुआओं की शक्ति ही हमें सरलता से उसे पार करा देगी, नहीं तो नहीं हो सकेगी, उस समस्या में फंस जाएंगे। लेकिन दुआओं की शक्ति है तो सहज पार हो जाएंगे, बहुत सरलता से, जिसको कहे मक्खन से बाल निकल जाता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी किसी के जीवन में गाड़ी में जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होकर होता है, गाड़ी की हालत देखो तो ऐसा लगता है इसमें कोई बचा नहीं होगा, कोई बचा नहीं होगा। लेकिन जब उन लोगों से मिलते हैं, उनको एक खरोच तक नहीं आई होती है, तो उस समय क्या कहते हैं, जरूर कोई पिछला दुआओं का खाता है आपके पास जमा के रूप में, जरूर कोई पुण्य का खाता जमा के रूप में है, और यही आज आपके सामने आया वो पुण्य का खाता, जिससे आप इतने बड़े एक्सीडेंट में भी बिना खरोच, कोई खरोच भी नहीं, और ऐसे मक्खन से बाल की तरह बाहर निकल आए। कहने का भाव कि आने वाले समय में बड़े से बड़ी परीक्षाएं आने वाली है, बड़े से बड़ी समस्याएं आने वाली है, बड़े से बड़ी परिस्थितियां आने वाली है, और अचानक का पेपर ज्यादा आएगा। उस समय अगर वह उस पेपर में से हमें सहज पार कराएगा, ये दुआओं की शक्ति ही है जो हमें सहज उसमें से बाहर निकाल सकता है, नहीं तो हम इस तरह फंस जाएंगे जो उसमें से निकलना तो क्या, लेकिन वहां ही अपने जीवन को अंत कर सकते हैं, ब्राह्मण जीवन का अंत कर सकते हैं। इसलिए बड़े से बड़ी परीक्षा को पार करने के लिए जितना दुआओं का खाता, पुण्य का खाता जमा के रूप में होता है, वो हमारे लिए एक श्वास बन जाता है, जो ऐसे समय में हमें जीवदान दे करके एक नया जीवन प्राप्त हुआ ऐसा अनुभव कराते हुए बाहर निकाल देगा। और उस समय देखने वाले भी यही कहेंगे, सचमुच उसके पास पुण्य का खाता बहुत था। और बात जो बाबा ने बताई कल की मुरली के अंदर दुआओं के लिए, कि दुआएं किसको मिलती है, ब्लेसिंग्स किसको मिलते हैं, जो बैलेंस रख करके चलने वाले हैं। बैलेंस किस में, जो स्व और सेवा में बैलेंस, न्यारा और प्यारा बनने का बैलेंस रख करके जो चलना जानता है, वही विशेष दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। और पिछली मुरली में भी बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बाबा को भी, भगवान को भी, और कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि बाबा को दादी याद आ रही है, दादी जी की याद भगवान को भी आए। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा दिल तख्त नशीन रतन है यज्ञ के अंदर, जिसने भगवान के दिल को जीत लिया है। ऐसी कौन सी विशेषता थी दादी के अंदर जिसने भगवान के दिल को भी जीत लिया, जिसके प्रति स्वतः आज सारे ब्राह्मण परिवार के अंदर से दुआएं निकलती है, और वो दुआएं किस प्रकार एक चमत्कारिक अनुभव करा करके दादी को जैसे स्वस्थ बना रहा है, ऐसी कौन सी विशेषता थी दादी के अंदर। तो बाबा ने यही बताया कि दादी की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी वो था मुस्कुराहट। दादी का मुस्कुराता चेहरा आज हर ब्राह्मण को, मधुबन में आए बाबा को मिले भी, लेकिन फिर भी एक कमी की महसूस था कि दादी जब आती थी स्टेज पर मुस्कुराते हुए चेहरे से डांस करती थी, और जब खास करके वो गीत बजता था नैनों में तेरा जलवा देखा बाबा, उस गीत को जब याद करते हैं, दादी का वो डांस देखते हैं, तो जैसे मन ही मन अंदर में भरपूर हो जाते हैं। भले किसको कैसा भी रहने का ठिकाना मिला हो, लेकिन दादी जी क्लास में आकर के ये शब्द जब पूछती थी, सबको ठीक व्यवस्था मिली है, सभी आराम से रहे हुए हो, सभी अपने आप को सेट करके, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कि सबकी तबीयत ठीक है, ये दादी के शब्द, जो सहानुभूति के शब्द और जो मुस्कुराता चेहरा, किसी की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो भी ठीक हो जाते थे, और यही दादी के शब्द ने सबके दिलों को जीत लिया। वही दादी की एक मुस्कुराहट, जब भी किसको देखती थी, मिलती थी, मुस्कुराते थे, और वो मुस्कुराहट जैसे आत्मा को भरपूर कर देती थी। ये विशेषता दादी की।